अन्वय के साइड से निकलते हुए आन्या ने जिद पर अड़ते हुए कहा, अगर तुम मुझे वजह नहीं बता सकते तो सॉरी, पर मैं भी तुम्हारी बात नहीं मान सकती, इसलिए मैं ऑफिस जरूर जाऊंगी। आन्या ने टेबल पर से अपना बैग उठाया और जाने लगी। अन्वय तेजी से उसके पास आया और उसकी कलाई पकड़कर रोकते हुए कहा, सुनाई नहीं दे रहा, मैं मना कर रहा हूं तुम्हें जाने से? हर बात पर जिद करना जरूरी है क्या? मैं नहीं, जिद तुम कर रहे हो। मैंने कहा ना, वजह बताओ मुझे कि क्यों मानूं मैं तुम्हारी बात। लगते क्या हो तुम मेरे जो मैं तुम्हारी बात मानूं? अगर जवाब नहीं तो मैं भी तुम्हारी बात नहीं मानने वाली, आन्या ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा और अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की। अन्वय ने उसकी कलाई छोड़ दी और धमकाते हुए बोला, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और घर से बाहर कदम भी रखा तो दोबारा न मेरे घर में कदम रखने की जरूरत है, ना ही मुझे अपनी शक्ल दिखाने की। और मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा, अगर तुमने इस घर से बाहर कदम रखा तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अन्वय ने गुस्से में ये कहकर अपना बैग लेकर तेज कदमों से वहां से निकल गया। आन्या उसकी बात सुनकर सदमे में थी। जब तक उसे कुछ समझ आया, अन्वय जा चुका था। आन्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने गुस्से में बैग बेड पर फेंकते हुए कहा, यूं समझते क्या हो तुम खुद को? जब मैं तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती तो कैसे मुझ पर अपना हुक्म चला सकते हो? मुझे धमकी देकर क्या समझते हो तुम कि मैं डर जाऊंगी और तुम्हारे इशारों पर नाचने लगूंगी? बिल्कुल नहीं, मैं वही करूंगी जो मेरा मन करेगा। उसने गुस्से में बैग उठाया और बाहर जाने लगी, पर चौखट पर जाकर उसके कदम रुक गए। अन्वय की कही बातें कानों में गूंजने लगीं और वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकी। गुस्से में वापस अंदर आकर उसने बैग बेड पर पटक दिया और धम से बेड पर गिर गई। कुछ देर गुस्से में बड़बड़ाती रही, फिर उठकर बैठ गई। उसने अन्वय की साइड से उपन्यास उठाया और गुस्से में उसे चीथड़े चीथड़े कर डाला। रूम में कागज ही कागज फैल गया, पर आन्या का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने गाने लगाए और गुस्से में नाचने लगी। वहीं दूसरी तरफ अन्वय के जाने के बाद से विजय बेहद गुस्से में यहां से वहां चक्कर काट रहा था। शायद आन्या को हासिल करने के लिए कोई योजना बना रहा था। तभी अचानक उसके केबिन का दरवाजा खटखटाया तो उसने बिना देखे ही कहा, अभी मैं बिजी हूं, बाद में आना। उसके मना करने के बाद भी दरवाजा खुला और नीलिमा ने केबिन में कदम रखा। विजय भड़कते हुए बोला, सुनाई नहीं देता तुम्हें, मैंने अंदर आने से मना किया था ना? सर, मैं आपकी गुस्से की वजह जानती हूं और आपकी मदद करने ही यहां आई हूं, नीलिमा ने शांत स्वर में जवाब दिया। उसकी बात सुनकर विजय की भौहें तन गईं। उसकी आंखों में झलकते सवाल को देखते हुए उसने आगे कहा, मैंने आपकी और उस लड़के की सारी बातें सुनी थी। कल आन्या को ड्रिंक मैंने करवाई थी, पर उसका फायदा आप उठाना चाहते थे। वो लड़का आपको खुली धमकी देकर गया है और अब आप उससे बदला लेना चाहते हैं, और मैं भी यही चाहती हूं, और मैं आपकी मदद कर सकती हूं इस काम में। मुझे आन्या से अपनी बेइज्जती का बदला लेना है और आपको उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना है। अगर हम दोनों मिल जाएं तो हम दोनों अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। मैं आन्या को हासिल करने में आपकी मदद करूंगी और बदले में मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। अब आप सोच लीजिए, आपको मेरी मदद चाहिए या नहीं। नीलिमा लबों पर रहस्यमयी मुस्कान सजाए उसे देखने लगी। उसकी बातों पर गौर करने के बाद विजय ने उससे सवाल किया, तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? मैं आन्या को वापस यहां आने पर मजबूर कर सकती हूं। आपको बस उसके आने से पहले ऑफिस स्टाफ को छुट्टी देनी होगी। उसके बाद यहां बस आप और वो होंगे, कोई नहीं होगा जो आपको रोके, और आप आन्या के साथ जो चाहते हैं वो सब कर पाएंगे, वो भी बिना किसी रुकावट या प्रॉब्लम के, नीलिमा ने शैतानी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसकी बात सुनकर विजय की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, फिर नीलिमा उससे हाथ मिलाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। शाम के करीब 4 बज रहे थे। विजय ने आज सबको आधे दिन की छुट्टी दे दी थी। अब वहां बस वो और नीलिमा थे। नीलिमा ने आन्या को फोन लगा दिया। आन्या जो कुछ देर पहले ही सोई थी, फोन के बजने से उसकी नींद खुल गई। गुस्सा अब कुछ शांत हो चुका था। अनजान नंबर देखकर उसने बेमन से फोन उठाते हुए कहा, हेलो, कौन? हेलो आन्या, मैं नीलिमा बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से नीलिमा की आवाज आई। ये सुनकर आन्या थोड़ी चौंक गई, पर उसने शांत रहते हुए कहा, हाँ कहो, कैसे फोन करना हुआ? यार, आज तुम ऑफिस क्यों नहीं आई? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, आन्या ने झूठ बोल दिया। नीलिमा ने अब उदास होने का नाटक करते हुए कहा, मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। वो कल गलती से मुझसे तुम्हारे जूस में ड्रिंक गिर गई थी, मुझे उसके लिए तुमसे माफी मांगनी थी। आई एम सॉरी यार, मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मेरा ध्यान नहीं था और ड्रिंक तुम्हारे जूस में गिर गई। उसने ऐसे दिखाया जैसे सच में वो दुखी और निर्दोष हो। आन्या को रायमा की कही बात याद आ गई, पर वो बात बढ़ाना भी नहीं चाहती थी, तो उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी। मुझे अपने पहले के बर्ताव के लिए भी तुमसे माफी मांगना था। पहले मैं तुमसे चलती थी, पर आज मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें वही मिला जिसकी तुम हकदार थी। मुझे अपनी गलतियों का एहसास है, प्लीज क्या तुम मुझे माफ करके मुझसे भी दोस्ती कर सकती हो? नीलिमा ने आवाज में ज्यादा मिठास खोलते हुए कहा। आन्या वैसे भी लोगों से घुलमिल रहती थी, किसी के लिए कोई द्वेष नहीं रखती थी अपने मन में, तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने तो तुम्हें हमेशा से अपनी दोस्ती माना है। अगर तुम अब मुझसे अपनी इस लड़ाई को खत्म कर रही हो तो ये तो अच्छी बात है, अब हम भी दोस्त बनकर रहेंगे।